नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने 40 एकड़ में फैले रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत अभियान का नया अध्याय है।
यहाँ से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और युवाओं के लिए अनेक नए अवसर लेकर आएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की प्रगति और विकास का प्रतीक बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर देश इस संकट से निपटने के प्रयास कर रहा है।
भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू और अन्य नेता उपस्थित थे। इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट के आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक इंजन में खराबी के संदेह में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 161 यात्री वाली यह फ्लाइट विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही थी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सुबह 10:39 पर हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फ्लाइट सुबह 10:54 पर सुरक्षित रूप से लैंड करवाई गई। हवाई अड्डे पर परिचालन अब सामान्य है। पश्चिम बंगाल में नवमी जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में दो समुदायों के बीच तीन स्थानों पर हुई झड़पों के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 30 हो गई है। इनमें से एक धार्मिक संगठन के दो नेता भी शामिल हैं। पुलिस और उपद्रवियों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। केंद्रीय बल इलाके में गश्त कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुई जेएनसी के विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार द्वारा पिछले साल जेएनसी के विरोध प्रदर्शन पर जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने के एक दिन बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
CPN-UML के अध्यक्ष ओली को काठमांडू से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूर्व गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक को भी भक्तपुर जिले के सूर्य विनायक नगर पालिका के कंटुजे स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। जेएनजी आंदोलन से संबंधित घटना की जाँच के लिए गठित जाँच आयोग ने ओली और लेखक सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। नवगठित सरकार ने कल अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जांच आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
पश्चिम एशिया में मिसाइलों और ड्रोन के ताजा हमलों के कारण तनाव तेजी से बढ़ गया है। खाड़ी के कई हिस्सों में मिसाइलों को गिराया गया है और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान के अधिकारियों ने बेरूत और दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हमलों में हताहत होने वाले लोगों की सूचना दी है। वहीं हिजबुल्ला का उत्तरी इसराइल पर हमला जारी है। इसराइल पर हवाई हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इसमें पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी पैर की चोट के कारण पहले दो सप्ताह के मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।